हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान। उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो। इन पंक्तियों की रचयिता हैं भारतीय स्त्री आंदोलन की अगुआ, कवियत्री, चिंतक, भारत की पहली अध्यापिका और सामाजिक क्रांति की अगुआ सावित्री बाई फुले। 18वीं सदी में लगभग 48 बरस तक महिलाओं और वंचित समाज के लोगों के लिए वह अनथक काम करती रहीं। इस कविता को तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में रखकर सुनेंगे ना तो पाएंगे कि इनमें अपने समय का चित्रण भी है और एक बिगुल भी, जिसने तब के सोए हुए समाज को बुरी तरह झकझोरा था। न्यूज 18 हिंदी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आइए आज बाजें सावित्री बाई फुले की कविताएं। सबसे पहले सुनते हैं उनकी कविता उसे कैसे इंसान कहें। उसे कैसे इंसान कहें, उसे कैसे इंसान कहें, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ लिख कर शिक्षित होने की मंशा नहीं, दिमाग होकर भी उसे व्यर्थ गवाए, उसे कैसे इंसान कहें। देहरी घाट पर बैठे बैठे पशु भी ऐसा कभी करे नहीं, विचार नहीं, आचार नहीं, उसे कैसे इंसान कहें। घर में बच्चों की भरमार, उनकी परवरिश और खाने पीने के हाल, काम चोर आलसी बना कंगाल, उसे कैसे इंसान कहें। सहानुभूति ना देता कोई, सहायता ना करे कोई, बेपरवाह ना करे किसी की, उसे कैसे इंसान कहें। ज्योतिष पंचांग हस्त रेखा में पड़े मूर्ख स्वर्ग नरक की कल्पना करे, पशु जीवन की हकीकत देखे नहीं, उसे कैसे इंसान कहें। पत्नी काम करती रहे, मुफ्तखोर बेशर्म खावे, पशुओं में ऐसा जूबा नहीं, उसे कैसे इंसान कहें। घर संसार में कंगाली छाई रहे, जिसका कोई पड़ोसी नहीं, धिक्कार करें सभी रिश्तेदार, उसे कैसे इंसान कहें। लिख पढ़ ना पावे, अनसुनी करे भलाई की बात, पशु को भी बात समझ में आवे, उसे कैसे इंसान कहें। पशुता की शर्म नहीं, उस बेशर्मी को ही माने सुख, पशु जीवन की जो राह चले, उसे कैसे इंसान कहें। दूसरों की कभी मदद ना करे, सेवा त्याग दया ममता से रहे हमेशा परे, जिसे सद्गुण सदाचार खले, उसे कैसे इंसान कहें। गुलामी का ना जिसे रंज हो, ना कभी उन्नति का संकल्प करे, मानवता को जो कहे मेरी ठोकर तले, उसे कैसे इंसान कहें। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बंदर इंसान, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बंदर इंसान, जन्म मृत्यु सभी चराचर को एक समान, जीवन का इतना सा सच जिसे समझ ना आए, उसे इंसान कैसे कहें। दोस्तों जरा कल्पना करें 18वीं शताब्दी की, उस दौर की किसी महिला का, उसके सामाजिक परिवेश का और उस परिवेश में उस स्त्री के अस्तित्व का। जब स्त्रियों को देहरी से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, वैसे समय में सावित्री बाई फुले अपनी पुरजोर आवाज में मर्दवादी और जातिवादी समाज के ठेकेदारों के खिलाफ बिगुल फूंक रही थी। वैसे तो यह कविता आज भी क्रांति की मिसाल की तरह है, पर उस वक्त निश्चित तौर पर इस कविता ने मशाल का काम किया। 18वीं सदी में सावित्री बाई फुले ने हर तरफ बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों की हत्या, विधवा स्त्रियों पर जुल्म जैसी तमाम बुराइयां देखी। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के बीच महज 3 सालों में अपने पति और सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल खोले। एक के बाद एक 18 स्कूल लड़कियों के लिए खोलकर उन्होंने इतिहास रच दिया। आइए सुने सावित्री बाई फुले की एक बाल कविता जिसका शीर्षक है श्रेष्ठ धन। सुबह सवेरे उठे जो बच्चा शौच आदि मुखमार्जन करे, हो जाए नहा धोकर तैयार और करे माता पिता को अभिवादन, स्मरण करके गुरु का मन लगाकर करे पढ़ाई, लाभकारी है दिन जीवन के व्यर्थ ना गवाए, करे नित पढ़ाई ज्ञान पाने के लिए, विद्या को समझकर सर्वोच्च, लीजिए लाभ विद्या का मन को एकाग्र करते हुए, विद्या ही धन है सभी धन दौलत से सर्वश्रेष्ठ अच्छा, जिसके पास है ज्ञान का भंडार है वह ज्ञानी जनता की नजरों में सच्चा। सावित्री बाई फुले के साहित्य में केवल कविताएं ही नहीं हैं, बल्कि पत्र, भाषण, लेख, पुस्तकें, बहुत कुछ शामिल है। काव्य रचना की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकों की रचना की। पहला संग्रह 1854 में छपा, दूसरा बावनकशी सुबोध रत्नाकर 1991 में छपा। इसे उन्होंने अपने जीवन साथी ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद जीवनी रूप में लिखा था। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। 9 साल की उम्र में ही 11 साल के ज्योतिबा के साथ उनका विवाह हो गया। महज 17 साल की उम्र में ही वह बच्चियों के एक स्कूल की अध्यापिका और प्रधानाचार्य दोनों की भूमिका में आ चुकी थी। लेकिन उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते उन्हें अपने समाज की पीड़ा से गहरा परिचय हो चुका था और वे इस पीड़ा से दो दो हाथ करने को तैयार थीं। इसी महसूसी हुई पीड़ा को उन्होंने कविता के रूप में ढाल दिया। आइए सुने अगली कविता, जिसका शीर्षक है शूद्रों का दुख। 2000 वर्ष पुराना शूद्रों से जुड़ा एक दुख। 2000 वर्ष पुराना शूद्रों से जुड़ा एक दुख। ब्राह्मणों की सेवा की आज्ञा देकर झूठे मक्कार स्वयं घोषित धरती के देवताओं ने उसे पछाड़ा। शूद्रों की बदहाली लाचारी देखकर हाय उद्गार होठों से फूट पड़े। मुक्ति का सुलभ उपाय राह कौन सी, सोच विचार के मति रिक्त खाली हुई। शूद्रों के लिए कहने योग्य है शिक्षा की राह प्रकाशित। शूद्रों के लिए कहने योग्य है शिक्षा की राह प्रकाशित। शिक्षा प्राप्ति से मिले इंसानियत, पशुता कभी आती नहीं निकट। वक्त कम है दोस्तों, लेकिन सावित्री बाई फुले की कविताएं जरूरी हैं, इसलिए बस उनकी परंपरा भंजक कविताओं का पाठ करती चलूंगी। भाव इतने सुगम हैं कि बहुत विस्तार में जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। देखिए ईश्वर के प्रति फुले का विद्रोह। शीर्षक है मन्नत। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वह असल में होता है पत्थर। महसोबा खेसोबा, महसोबा खेसोबा भयंकर विकराल विद्रूप देवता, पत्थरों पर आस्था श्रद्धा छिड़क कर मन्नत मांगे काटे बकरा, मन्नत मांगे काटे बकरा करे हलाल, चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों को पुत्र जन्म पर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो फिर व्यर्थ शादी क्यों रचावे नर नारी। सावित्री कहे सोच विचार करने के बाद जीवन को समृद्ध बनाइए विवेक के साथ। यह सब लिखते हुए सावित्री बाई फुले कई कई बार मिटती और बनती रही होंगी। इसी पीड़ा को, इसी मिटने और बनने को उन्होंने स्वर दिया है अपनी कविता कवि और कविता में। कवि करता है कविता का सृजन, कवि करता है कविता का सृजन, कल्पना के सहारे सुख दुख की वह बातें करता, कभी स्वर्ग का अनुभव तो कभी नरक का अनुभव करता। कभी पल में स्वयं रोता रुलाता, कभी नाचने लगता कभी गाता, कभी देवता आराधना करता दिखाई देता है। कभी अघटित घटना का सृजनहार, कभी अद्भुत भव्य लय में गाता है। नजरों के सामने खड़ी करता है काल्पनिक परियां, किंतु कवि से प्रेम परी ना करें कभी। गालों में मुस्कुरा कर मीठी मीठी बातें कर, गालों में मुस्कुरा कर मीठी मीठी बातें कर, बहकावे कल्पना लोक की परियां, बाहों में भर कर लेती हैं चुंबन, कवि के मन में ऐसा चित्र दिखाई दे। दोस्तों साल 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली। इस महामारी में भी निडर निर्भीक सावित्री बाई फुले प्लेग पीड़ितों की मदद करती रहीं। एक बच्चे को बचाते हुए खुद भी प्लेग पीड़ित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने देह त्याग दी। मित्रों आपको बता दूं कि सावित्री बाई फुले की मूल कविताएं मराठी में हैं। इन्हें हिंदी में अनुवादित किया है शेखर पवार और फारूक शाह ने। इनका संकलन संपादन किया है प्रख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अनीता भारती ने। इन तीनों महानुभावों का शुक्रिया कि इतिहास के गर्भ में पहुंचकर हमें सावित्री बाई फुले की रचनाओं और उनकी रचनाशीलता से मिलवाया। हमें भरोसा है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक और रचनाकार से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दें पूजा प्रसाद को विदा। नमस्कार।